एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही अनोखी किताब पर बात करने वाले हैं, एलिसन बेचटेल की 2006 में आई ग्राफिक संस्मरण फन होम, अ फैमिली ट्रेजिकॉमिक।
हाँ नमस्कार, ये वाकई एक अभूतपूर्व काम है। मतलब सिर्फ एक किताब नहीं, एक तरह की क्या कहूँ, भावनात्मक और बौद्धिक खुदाई है।
बिल्कुल, एक बेटी की अपने पिता के छुपे हुए जीवन और उनकी रहस्यमयी मौत की कहानी।
और एलिसन बेचटेल, जिन्हें लोग पहले उनकी कॉमिक स्ट्रिप डाइक्स टू वॉच आउट फॉर से जानते थे, उन्होंने फन होम से एक बिल्कुल नई पहचान बनाई। ये सिर्फ आत्मकथा नहीं है।
हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इसमें यादें हैं, पुरानी तस्वीरें, डायरी, चिट्ठियां
और साथ में ढेर सारे साहित्यिक हवाले। मतलब ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर तक सब कुछ बुना हुआ इसमें, एक पहेली जैसी। सही कहा। और इसे LGBTQ+ साहित्य और ग्राफिक नॉवल की दुनिया में एक मील का पत्थर भी मानते हैं।
हाँ, क्योंकि ये सिर्फ पहचान की बात नहीं करती, बल्कि उसे परिवार, साहित्य और मानसिक स्वास्थ्य के जटिल जाल में बुनती है। ये पूछती है कि हम सच, झूठ, कला, यादों से अपनी पहचान आखिर बनाते कैसे हैं।
तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, पर एक बात शुरू में साफ कर दें, किताब सीधी नहीं चलती, मतलब टाइमलाइन आगे पीछे होती रहती है यादों के हिसाब से।
अच्छा,
तो समझने में आसानी के लिए हम कोशिश करेंगे कि कहानी के मुख्य हिस्सों को थोड़ा क्रम से देखें, जैसे कोई जासूस सुराग जोड़ता है वैसे।
ठीक है, तो शुरू करते हैं एलिसन के बचपन से। पेंसिल्वेनिया का कोई छोटा सा कस्बा है, बीच क्रीक।
हाँ, और वहाँ एक बड़ा सा पुराना विक्टोरियन घर। ये घर सिर्फ घर नहीं था, ये उनके पिता ब्रूस बिचडेल का एक तरह का जुनून था। वो इसे सजाते संवारते रहते थे।
किताब में लगता है जैसे वो घर सुंदर भी था और घुटन भरा भी, एक जेल जैसा।
तीसरी पीढ़ी के और हाई स्कूल में अंग्रेजी के टीचर।
लेकिन घर पे?
घर पर बिल्कुल अलग, कला और सुंदरता के लिए दीवानगी, पर गुस्सैल, परफेक्शनिस्ट और इमोशनली बहुत दूर। कब गुस्सा आ जाए पता नहीं, बड़े जटिल इंसान थे।
वो फन होम वाली बात बड़ी दिलचस्प है। बच्चों ने ही नाम रखा ना, फ्यूनरल होम का मजाक उड़ाते हुए।
हाँ, एलिसन और उनके दो भाई थे क्रिश्चियन और जॉन, उन्होंने ही ये नाम रखा था फन होम। कितना गहरा व्यंग है इसमें।
सोचिए जरा, एक ही घर में मौत का कारोबार भी और रोजमर्रा की जिंदगी भी, सुंदरता भी और चीजों का सड़ना गलना भी। इस माहौल का एलिसन पर क्या असर हुआ होगा?
बहुत ज्यादा। वो बचपन से ही खुद को टॉमबॉय कहती हैं, मतलब लड़कियों वाले खांचे में फिट नहीं होती थीं। पिता चाहते थे वो फ्रॉक पहने, सलीके से रहें।
और वो
उन्हें पैंट पहनना, छोटे बाल रखना पसंद था। तो ये पिता और बेटी के बीच एक खामोशी सी तनातनी हमेशा चलती रहती थी।
और माँ हेलेन बिचडेल, उनका क्या रोल था इस सब में?
वो पहले एक्ट्रेस थीं, टीचर भी थीं, प्रतिभाशाली थीं, पर थोड़ी अलग थलग सी रहती थीं। ज्यादातर किताबों और म्यूजिक में खोई रहती थीं। शायद घर के तनाव से बचने का उनका अपना तरीका था ये।
तो ऐसा लगता है जैसे पूरा परिवार एक नाटक खेल रहा था, सब अपनी भूमिका निभा रहे थे पर असली कहानी पर्दे के पीछे थी।
हाँ, कुछ ऐसा ही। और एलिसन पर दो चीजों का गहरा असर पड़ा, एक तो पिता की बनाई वो बाहरी सजी सजाई दुनिया, वो दिखावा,
और दूसरा
वो किताबें जिनसे पिता ने ही उन्हें मिलवाया था। अजीब बात है ना, जो पिता भावनात्मक रूप से इतने दूर थे, उन्होंने ही बेटी को वो भाषा दी जिससे वो बाद में दुनिया को और खुद अपने परिवार को समझ सकी। लिटरेचर उनके लिए एक चाबी बन गया।
ये वाकई दिलचस्प है कि लिटरेचर कैसे उनकी समझ का आधार बना। फिर वो कॉलेज गई, ओबर्लिन कॉलेज। वो दौर कैसा था?
वो एक तरह से मुक्ति जैसा था। नया माहौल, बौद्धिक बहसें, फेमिनिज्म से परिचय हुआ, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी सेक्सुअलिटी को समझा, उसे स्वीकार किया।
कैसे? मतलब कोई खास घटना हुई?
हाँ, वो बताती हैं कि समलैंगिकता पर एक किताब पढ़ते हुए उन्हें अचानक से खुद की पहचान का एहसास हुआ, एक लाइट बल्ब मोमेंट जैसा।
और फिर उन्होंने ये बात घर पे बताई 19 साल की उम्र में, उस जमाने में, उस घर में। ये तो बड़ा कदम रहा होगा।
बहुत बड़ा, हिम्मत का काम था। पहले खुद मानना, फिर चिट्ठी लिखकर माँ बाप को बताना कि वो लेस्बियन है। ये सिर्फ बताना नहीं था, ये उस घर की सालों की चुप्पी को तोड़ना था। ईमानदारी की मांग थी एक तरह से।
और यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल गया।
हाँ, यहीं से। उस चिट्ठी के जवाब में जो हुआ, उसने सब कुछ बदल दिया। माँ का फोन आया और उन्होंने वो बात बताई जिसने एलिसन की दुनिया ही पलट दी।
क्या बताया?
उन्होंने बताया कि उनके पिता ब्रूस बेचडेल के भी गुप्त संबंध थे पुरुषों के साथ सालों से, और इनमें उनके कुछ पुराने छात्र, यहाँ तक कि नाबालिग लड़के भी शामिल थे। ये तो बहुत शॉकिंग रहा होगा। पिता की पूरी इमेज, उनका हर बर्ताव
सब एक झटके में बदल गया।
वो गुस्सा, वो सुंदरता का जुनून, वो दूरी, सब अचानक समझ आने लगा। वो सिर्फ एक मुश्किल पिता नहीं थे, वो एक छोटे पुराने ख्यालों वाले शहर में अपनी असलियत छुपा कर जीने वाले, मतलब क्लोजेटेड गे व्यक्ति थे। उनकी कहानी दुखद बन गई
और एलिसन को अपने पिता की हर याद एक नई दुख भरी नजर से देखने लगी होगी।
बिल्कुल। और फिर एक और एहसास हुआ उन्हें कि उनका खुद का कमिंग आउट, यानी सच्चाई के साथ बाहर आना, उनके पिता की जिंदगी भर क्लोजेट में फंसे रहने का एक अजीब दर्दनाक आईना था।
हाँ, मतलब एक बेटी आजाद हो रही थी और पिता उसी पहचान को छुपाते हुए जी रहे थे, बिल्कुल समानांतर पर उल्टी दिशा में।
सही कहा, ये समानांतर लेकिन विपरीत यात्राएं ही किताब के दिल में हैं। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि जब एलिसन फन होम लिख रही थी तब तक वो एक जानी मानी कार्टूनिस्ट बन चुकी थी।
हाँ, उनकी वो कॉमिक स्ट्रिप डाइक्स टू वॉच आउट फॉर, वो तो काफी मशहूर हुई थी।
बहुत। 1983 से 2008 तक चली वो, और वो सिर्फ कॉमिक्स नहीं थी, वो लेस्बियन समुदाय की जिंदगी, उनके रिश्ते, उनकी राजनीति का एक जीता जागता रिकॉर्ड थी। बेचडेल ने वहीं अपनी वो बारीक नजर, वो किरदारों की गहराई पकड़ना सीखा था।
तो कह सकते हैं कि उस कॉमिक स्ट्रिप ने उन्हें फन होम लिखने के लिए तैयार किया।
हाँ, एक तरह से वो अनुशासन, वो चीजों को गौर से देखने की आदत, वो सब काम आया जब उन्होंने अपने ही अतीत की इतनी गहरी पड़ताल की। फन होम से ही उन्हें साहित्यिक दुनिया में बड़ी पहचान मिली, उनके काम का शिखर कह सकते हैं इसे।
लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ तो अभी आना बाकी था, पिता की मौत।
हाँ, एलिसन के कमिंग आउट के सिर्फ 4 महीने बाद ब्रूस बेचडेल की उम्र तब सिर्फ 44 साल थी, एक ट्रक से टक्कर हुई उनकी, सनबीम ब्रेड का ट्रक था, किताब में जिक्र है।
और मौत का कारण?
आधिकारिक तौर पर तो दुर्घटना माना गया, लेकिन हालात ऐसे थे कि एलिसन और परिवार को हमेशा शक रहा कि ये आत्महत्या थी, जानबूझकर ट्रक के सामने आ गए थे वो।
और यही सवाल कि क्या एलिसन के कमिंग आउट ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया, ये सवाल पूरी किताब पर छाया रहता है ना?
हाँ, एक भारी साई की तरह। और इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, शायद मिल भी नहीं सकता।
तो ये किताब एक तरह से इसी सवाल से जूझने की कोशिश है।
बिल्कुल, जवाब खोजने की, या शायद ये मानने की कि कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं। किताब खत्म भी किसी नतीजे पर पहुंचकर नहीं होती, बल्कि पिता के साथ बिताए एक आखिरी पल की याद पर खत्म होती है। और देखे तो फन होम को लिखने में जो 7 साल लगे, वो पूरी प्रक्रिया ही पिता की इस पहेली को समझने की एक लंबी मुश्किल कोशिश थी।
ये सब जानकर एलिसन बेचडेल के सोचने के तरीके, उनके मूल्यों के बारे में क्या पता चलता है? सच उनके लिए क्या मायने रखता है?
उनके लिए सच कोई सीधी बनी बनाई चीज नहीं है। वो मानती हैं कि सच जटिल होता है, व्यक्तिपरक होता है, और उसे आप कड़ी मेहनत, जांच पड़ताल, विश्लेषण और हाँ, कला के जरिए बनाते हैं, खोजते हैं।
उनका तरीका क्या है? वो खुद को संदेहवादी पुरालेखपाल जैसा कहती हैं।
हाँ, स्केप्टिकल आर्काइविस्ट, मतलब वो सिर्फ यादों पर भरोसा नहीं करती। यादें तो धोखा दे सकती हैं, भावनाओं से रंगी हो सकती हैं। वो अतीत को एक केस की तरह देखती हैं, सबूत इकट्ठा करती हैं।
सबूत? जैसे?
जैसे बचपन की डायरी, पुराने खत, तस्वीरें, और इन सब के साथ वो लिटरेचर का इस्तेमाल करती हैं। वो इन सब को मिलाती हैं, पैटर्न ढूंढती हैं, कहाँ विरोधाभास है ये देखती हैं।
लिटरेचर का इस्तेमाल यहाँ बहुत खास है, वो उसे सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के औजार की तरह इस्तेमाल करती हैं।
यही सबसे जरूरी बात है। लिटरेचर उनके लिए परिवार की गुत्थियों को खोलने वाली रोसेटा स्टोन है, जैसे वो अपने पिता की तुलना डेडलिस से करती हैं, वो ग्रीक मिथकों का कारीगर जिसने ऐसी भूल भुलैया बनाई कि खुद उसमें फंस गया।
तो ये सिर्फ एक साहित्यिक तुलना नहीं है?
नहीं, ये उनके पिता के बनाए भावनात्मक जाल को समझने की कोशिश है, और खुद को इकरस के रूप में देखना, शायद वो सच के सूरज के ज्यादा करीब उड़ने का खतरा उठा रही थी।
या जब वो फिट्ज़गेरल्ड, कामू, जॉयस का जिक्र करती हैं।
हाँ, वो इन लेखकों की किताबों में अपने परिवार की कहानी, पिता के संघर्ष, अपनी पहचान की तलाश के अक्स देखती हैं। ये उनका गहरा यकीन है कि कला और साहित्य हमें जिंदगी की उलझनों को समझने के लिए जरूरी भाषा और ढांचा देते हैं। उनके लिए तो पहचान भी एक टेक्स्ट की तरह है, जिसे हम लिखते हैं फिर मिटाकर दोबारा लिखते हैं।
और ये भी तो है कि ये एक ग्राफिक संस्मरण है, चित्र भी हैं, सिर्फ शब्द नहीं। इसका क्या महत्व है?
बहुत ज्यादा। शब्द और चित्र मिलकर ऐसी परतें बनाते हैं जो सिर्फ लिखने से नहीं बन सकती। आप एक फ्रेम में पिता को मुस्कुराते हुए देख सकते हैं, पर साथ में लिखा टेक्स्ट उनके किसी छुपे हुए काम के बारे में हो सकता है। ये दोहरापन, अतीत वर्तमान का टकराव, बाहरी दिखावा और अंदर का सच, ग्राफिक मीडियम इसे बहुत असरदार ढंग से दिखाता है। चित्र सिर्फ सजावट नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है, विश्लेषण का एक और टूल।
तो इस पूरी कहानी में वो कौन से तीन पल थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया, तीन सबसे अहम मोड़?
मेरे हिसाब से पहला तो था एलिसन का कमिंग आउट, 1980 में वो चिट्ठी, 19 साल की उम्र में ये कहना कि वो लेस्बियन है। ये उस परिवार में जहां सब कुछ ढका छुपा था, सच्चाई की एक जोरदार मांग थी। इसने चुप्पी की दीवार तोड़ी और आगे जो हुआ उसकी शुरुआत की,
यानी माँ के उस खुलासे की जमीन तैयार की।
हाँ, और वो खुलासा ही दूसरा निर्णायक मोड़ था, पिता की समलैंगिकता का पता चलना, चिट्ठी मिलने के बाद माँ का फोन पर ये बताना कि ब्रूस के पुरुषों और लड़कों से संबंध थे।
इसने तो एलिसन की दुनिया ही बदल दी होगी
पूरी तरह से। पिता की हर याद, हर बात का मतलब बदल गया। वो अचानक एक दुखद हीरो जैसे बन गए, और एलिसन का उनसे रिश्ता भी बदल गया। वो सिर्फ बेटी नहीं रही, वो अपने पिता में अपना ही एक उल्टा अक्स देखने लगी।
और तीसरा मोड़, जाहिर है पिता की मौत।
हाँ, ब्रूस बैचडेल की मौत, कमिंग आउट के सिर्फ 4 महीने बाद। वो ट्रक वाली टक्कर, दुर्घटना या आत्महत्या, ये सवाल हमेशा रहा।
ये वो अनसुलझी पहेली है जो किताब के केंद्र में है।
बिल्कुल, वो आखिरी चुप्पी, वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। उनकी मौत ने पिता बेटी के रिश्ते को एक ऐसे मोड़ पर फ्रीज कर दिया जहां शायद समझ बन सकती थी पर बनी नहीं, और शायद इसी अधूरेपन ने, इसी रहस्य ने एलिसन को फन होम लिखने पर मजबूर किया। लिखने की प्रक्रिया ने उन्हें बेटी से एक जासूस बना दिया।
ये कहानी इतनी निजी है, फिर भी क्या इसमें कुछ ऐसा है जिससे आज हम सब जुड़ सकें? कोई सबक?
हाँ, कई है। पहला तो शायद यही कि हम अपने माँ बाप को भी देखें तो अधूरे जटिल इंसानों की तरह देखें। उनकी भी अपनी कहानियाँ होती हैं, अपने राज होते हैं जिन्हें हम शायद कभी पूरा न जान पाएं।
और परिवारों में जो बातें छुपाई जाती हैं, उनका बोझ, यादों का धोखा देना, ये सब तो बहुत आम अनुभव है।
सही कहा। और चुप्पी की ताकत, कैसे अनकही बातें रिश्तों को अंदर से खा जाती हैं। लेकिन किताब ये भी दिखाती है कि कला, लेखन, खोजबीन के जरिए हम मरने के बाद भी अपनों से जुड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ये हीलिंग का एक तरीका हो सकता है।
इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले दर्द, जनरेशनल ट्रॉमा की भी बात है, कैसे एक पीढ़ी की मुश्किलें अगली पीढ़ी पर असर डालती हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे ब्रूस का अपनी पहचान छुपाना, उस जमाने के सामाजिक दबाव, इसका सीधा असर एलिसन की जिंदगी, उनकी पहचान पर पड़ा। ये एक अदृश्य विरासत जैसी होती है।
और एक बात जो आज के जमाने से बहुत जुड़ती है, असली होना बनाम दिखावा करना, जैसे ब्रूस अपने घर को परफेक्ट दिखाते थे।
हाँ बिल्कुल, वो घर आज के परफेक्ट सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसा था, बाहर से सब चमकदार, अंदर का पता नहीं। ये किताब सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितना कुछ छुपाते हैं और क्यों।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर तीन मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहले कोई भावनात्मक सबक।
भावनात्मक रूप से मुझे लगता है फन होम उस गहरे अकेलेपन के बारे में है जो अनकहे रहस्यों से पैदा होता है। ये दो लोगों की कहानी है, पिता और बेटी, जो कितने मिलते जुलते थे पर कभी एक दूसरे को जान नहीं पाए क्योंकि एक चुप्पी की कैद में था। ये किताब उस बेटी की कोशिश है कि वो मौत के बाद ही सही अपने पिता तक पहुंचने का कोई रास्ता बनाए, कला, यादों और सच की खोज के जरिए।
ये वाकई छू लेने वाली बात है। और बौद्धिक स्तर पर कोई इंटेलेक्चुअल इनसाइट?
बौद्धिक स्तर पर ये किताब दिखाती है कि एलिसन बेचडेल सिर्फ कहानी नहीं कहती, वो उसका विश्लेषण करती हैं जैसे कोई स्कॉलर टेक्स्ट को पढ़ता है। वो लिटरेचर को मिथकों से लेकर जॉयस तक एक जासूस के मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करती हैं। उनके लिए किताबें भागने की जगह नहीं, समझने का नक्शा है। फन होम ये बताता है कि कला कोई शौक की चीज नहीं, बल्कि जिंदगी की उलझनों को समझने का एक जरूरी औजार है।
बहुत खूब। और आखिर में एक ऐसा सबक जो हम सब पर लागू हो,
एक यूनिवर्सल इनसाइट,
शायद ये कि हम सब अपने परिवार के इतिहास के म्यूजियम के क्यूरेटर हैं। इस म्यूजियम में धुंधली तस्वीरें हैं, आधी अधूरी कहानियां हैं, बंद दरवाजे हैं जिन्हें खोलने से हम डरते हैं। फन होम हमें सिखाता है कि सबसे हिम्मत का काम है अपने ही जीवन का जासूस बनना, अपने माँ बाप को और उनके जरिए खुद को समझने की कोशिश करना। जरूरी नहीं कि सारे जवाब मिल जाएं। पिता की मौत का सच शायद कभी ना पता चले, लेकिन ये कोशिश करना, देखना, समझना, इसी से हमें शायद थोड़ी शांति, थोड़ी सहानुभूति और जिंदगी का कुछ मतलब मिल सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।